मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछले ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा था और मुझे लगा कि उसमें बातें पूरी नहीं हो पाएंगी, इसीलिए मैंने आपसे वायदा किया था कि इसका जो सेकेंड पार्ट होगा हम नेक्स्ट ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में उसे लेंगे और उसी के तहत आज भी मैं आपसे स्पिरिचुअल एनर्जी पर ही कुछ बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को यह भी याद होगा कि पिछले ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की थी कि जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो उसे धर्म से जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि जैसे ही हम उसे धर्म से जोड़ते हैं वैसे ही आप समझ लीजिए कि हम एक प्रकार से सीढ़ी को ही अपनी मंजिल समझने की भूल कर बैठते हैं और वहीं सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं लगभग बिखरने लगती हैं, स्पॉइल होने लगती हैं, क्योंकि धर्म का आज के संदर्भ में जिस तरीके से उपयोग हो रहा है या जिस तरीके से परिभाषित की जा रही है चीजें, उससे भटकने की आशंका मुझे लगता है कि ज्यादा हो गई है। इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी है उसे आप बिल्कुल अलग करके देखें। और एक कारण और भी है, धर्म की उत्पत्ति शुरू में प्रकृति से हुई थी, इसके बारे में आप सब जानते हैं, और जब तक धर्म सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ था तब तक यह एकदम एक साइंस थी। धर्म भी अपने आप में एक साइंस था, लाइफ साइंस उसे आप कह सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप उसे भी हायर साइंस कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे धर्म में कर्म कांड जुड़ते चले गए, वो पंथ में कन्वर्ट होते चले गए, वैसे वैसे उसमें से विज्ञान के तत्व खारिज होने लगे और वह अपनी जो रियल जो पावर है उसकी जो वास्तविक शक्ति है वो खोने लगा। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली वो नेचर से ही जुड़ा हुआ है, नेचर से यानी कि प्रकृति से। और सच पूछिए तो ये जो नेचर है जिसे हम प्रकृति कहते हैं, यह प्रकृति व्यक्ति में भी है। व्यक्ति में जो प्रवृत्ति होती है, जो कहते हैं ना उसकी प्रकृति ऐसी है, वह बेसिकली इसी नेचर को, जो नेचर इतना बड़ा जो अंतरिक्ष है जो पूरी की पूरी जो हमें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वह उसी को ही रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए मित्रों, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मैं अक्सर उसके साथ में चेतना की बात करना नहीं भूलता। और सच पूछे तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चेतना है हमारी, जिसे हम कॉन्शस कहते हैं, जिसके बारे में साइंस भी बातें करता है, उस पर रिसर्च भी हुई है, और खासकर जो हमारा जो मनोविज्ञान शास्त्र है वो तो पूरा का पूरा चेतना पर ही आधारित है, वह बेसिकली चेतना का ही परिष्कृत रूप हमें कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में दिखाई देता है। इस बारे में मैं आपसे आज थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। मित्रों, मेरी एक किताब आई है, आप भी बन सकते हैं राम। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है इनफैक्ट कि यदि हम राम को एक राजकुमार मान लें, वो राजा दशरथ के पुत्र थे, चलिए आप धर्म को किनारे कर दीजिए, धर्म ग्रंथों को किनारे कर दीजिए, कुछ समय के लिए हम वाल्मीकि के रामायण को या तुलसीदास के रामचरितमानस को एक साहित्य का ग्रंथ मान लेते हैं और राम को एक चरित्र मान लेते हैं, तो राम राजा दशरथ के पुत्र थे, यानी कि एक राजकुमार थे, वो ईश्वर बने, आज उनकी पूजा होती है, उनमें ईश्वरत्व हमें दिखाई देता है, हम मानते हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? तो उस पूरी की पूरी किताब में मैंने यही बताने की कोशिश की है, रामचरितमानस की घटनाओं को ही लेकर, कथा बिल्कुल रामचरितमानस की है कि किस तरीके से राम का जो संघर्ष रहा है, जो पूरे की पूरी जीवन की जो यात्रा रही है, वह मूलतः कहीं न कहीं लगातार अपनी चेतना को परिष्कृत किए जाने की यात्रा रही है। वो लगातार अपने कॉन्शस को प्योरिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर के मैंने यह किताब लिखी है। तो यहां मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि यदि चेतना के बारे में आप और कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप ये आप भी बन सकते हैं, राम किताब पढ़ सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कॉन्शियस की समझ थोड़ी सी और ज्यादा हो सकेगी। और इसमें मैंने जो कॉन्शियस की जो समझ बताई है वो बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से नहीं है, वह मनोवैज्ञानिक तरीके से भी नहीं है, वो बिल्कुल एक हमारे आप सबके जो जीवन की घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से हम जीवन में इंटरैक्ट करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, सारी उन्हीं बातों को लेकर के राम के संदर्भ में विश्लेषण करने की कोशिश मैंने की है। मित्रों, ये जो हमारी चेतना है, ध्यान होगा आपको, इससे पहले के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैंने एक ज्योति जो सूर्य जो बल्ब है उसमें जो बल्ब बनते हैं उसके प्रोसेस के बारे में बताया था, सूर्य रोशनी में जो बल्ब बनते हैं कि किस तरह से जो कूड़े का ढेर है, कूड़े का ढेर तो नहीं कहना चाहिए, जो ईंट गारे और पत्थरों का ढेर है, बाद में एक चमचमाते हुए ग्लास कांच में परिवर्तित हो जाता है। सच पूछे तो हमारी जो उत्पत्ति है वो स्पिरिचुअलिटी में ही हुई है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी के जो तत्व होते हैं वो बहुत जबरदस्त रूप से मौजूद रहते हैं। हम बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी की बूंदें अपने आप में बिल्कुल पवित्र हैं, कहीं कोई प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल पानी की बूंदें साफ सुथरी हैं। और कभी आप इन ठंड के दिनों में आप पानी की उन बूंदों को या ओस की बूंदों को पत्तियों पर ठहरे हुए रूप में देखें तो आपको लगेगा कि ये तो वास्तव में मोती ही है। हमारी चेतना भी आरंभ में बिल्कुल इसी तरीके की होती है। कबीर दास के दोहे जो हैं वो हमारे लोगों में बहुत प्रचलित हैं और बहुत से लोगों को कबीर के बहुत से दोहे याद है। मुझे यकीन है कि मैं एक दो लाइनें कबीरदास जी की आप लोगों के सामने रखता हूं, इसमें शायद आप लोगों को चेतना के पवित्रता के बारे में कुछ आभास मिल सके। कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, जस की तस धर दीनी चदरिया, जस की तस धर दीनी चदरिया, यानी कि मैंने अपने इस चद्दर को उसी तरीके से वापस रख दिया जैसा कि मैं लेकर आया था, जस की तस धर दीनी चदरिया, वापस कर दिया। ये जस की तस क्या है, ये चदरिया क्या है? ये चदरिया शरीर नहीं है, ये चदरिया बेसिकली चेतना है। कबीर दास ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर या हे प्रकृति, जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि कबीर में आपको सगुण परंपरा भी मिलती है, वो ईश्वर के सगुण रूप की भी बात करते हैं, वो ईश्वर के निर्गुण रूप की भी बात करते हैं, लेकिन ज्यादा वो चूंकि निर्गुण रूप की बात करते हैं इसीलिए उनको निर्गुण संत भी कहा जाता है, वो ईश्वर का कोई रूप नहीं मानते। ऐसा संत भी कह रहा है जस की तस धर दीनी चदरिया, चेतना की बात कर रहे हैं कि मुझे जैसी पवित्र चेतना, जैसी विशुद्ध चेतना मिली थी, बिल्कुल उसी विशुद्ध चेतना के साथ मेरे जीवन का अंत हो रहा है, यानी कि मैं कहीं भी प्रदूषित नहीं हुआ हूं। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा जो कबीर दास के लगभग लगभग इसी तरह की फिलॉसफी से प्रेरित गीत है दोस्तों, और वो है लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। इसको आप कभी सुन करके देखिए और ध्यान से सुन करके देखिए, और जो मैं चेतना की अभी व्याख्या थोड़ी सी व्याख्या कर रहा हूं आप उसको उसके ऊपर अप्लाई करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल गनगना उठेगा और उस गीत के आपके लिए अर्थ बदल जाएंगे, और जैसे ही उसके अर्थ बदलेंगे आपके अंदर एक तरह की स्पिरिचुअलिटी जन्म लेने लगेगी। लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, यानी कि मेरी जो चेतना थी, जो अब तक इतनी पवित्र चेतना थी, उसमें अब दाग लग गए हैं, मेरी चुनरी में दाग लग गए हैं, अब संकट है कि मिटाऊं कैसे। और इसके बाद इसी में लाइन आती है कि बाबुल से अंखियां मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। सोच के देखिए, घर जाऊं कैसे, बाबुल से अंखियां मिलाऊं कैसे। ये बाबुल कौन है? ये बाबुल पिता है। कौन पिता? ठीक वैसे जैसे बेटी अपने मायके वापस आती है और अगर वो अपने ससुराल में बदनाम हो गई है तो उसको लगता है कि मैं अपने पिता से आंखें कैसे मिलाऊं। बिल्कुल वही स्थिति यहां है कि एक जीव जो इस धरती पर आया है, अब उसे फिर से वहां वापस जाना है, ईश्वर के पास वापस जाना, उस पिता के पास वापस जाना है, और चूंकि उसके चुनरी में दाग लग चुके हैं, उसने अपनी चेतना को प्रदूषित कर दिया है, चेतना को गंदा कर दिया है, तो अब उसके सामने संकोच ये हो रहा है कि वापस जाकर के उससे कैसे आंख मिलाए, उसे क्या जवाब दे, जिसे सभी धर्म ग्रंथों में यह बात कहा गया है कि ईश्वर को आपको आखिरी दिन जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, अपना लेखा जोखा पेश करना पड़ेगा। मित्रों, यहां भी लागा चुनरी में दाग, मिटाऊं कैसे, उस चेतना में लगी हुई दाग ही है। अब आप चेतना के दो रूप देखिए कि दोस्तों, जब हमारे पास जब चेतना शुरुआत में जो होती है, या जिस चेतना को लेकर के हम इस धरती पर आते हैं, हमारा अवतरण होता है, उस चेतना में क्या होता है, वो चेतना बिल्कुल पवित्र होती है, बिल्कुल जैसे कि गंगा की धारा गोमुख से निकली हुई हो, ग्लेशियर पिघल करके बिल्कुल विशुद्ध पानी, चमकीला पानी है। उस वह जो चेतना होती है वो प्रेम से भरी हुई चेतना होती है, प्रेम मेड रसी बगी हुई चेतना, जिसके मन में कहीं कोई दुराभाव नहीं है, जो सबसे प्रेम कर रहा है, जो करुणा से लबालब है, ऐसी चेतना, ये हमारी प्योर चेतना है, प्योर कॉन्शियस है। लेकिन जैसे ही हम संसार में आते हैं, अब इस चेतना के ऊपर, जैसा कि मान लीजिए कि एक शीशा है, चेहरा देखने का शीशा है, ग्लास है, और आप देखते हैं कि अगर उसे आप पट रख दें तो धीरे 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 उस पर धूल जमती चली जाएगी, कभी कोई दाग भी पड़ जाएगा, और अब आप जब उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो आपको अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो चमक है वो धुंधली पड़ चुकी है। हमारी चेतना के साथ भी यही होता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं और आने के बाद जब दुनियादारी में फंसते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में ईर्ष्या होने लगेगी, उसकी कमीज मेरी कमीज से उजली कैसे, उसके यहां टीवी आ गया, बीएमडब्ल्यू कार आ गई, मेरे यहां क्यों नहीं, तो ये ईर्ष्याएं हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं, क्रोध का भाव उत्पन्न होने लगता है, बात बात में हम टेंपर लूज करने लगते हैं, और ये जो क्रोध का भाव जो पैदा होता है, इसको जन्म देने वाले जो दो सबसे बड़े कारण होते हैं, उसमें एक होता है हमारा ईगो और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा स्वार्थ। जहां भी किसी ने हमारे स्वार्थ पर चोट पहुंचाई हम फनफना उठते हैं, जहां भी किसी ने हमारे ईगो को जरा सा भी झटका दिया, जरा सा भी ठेस पहुंचाया, वैसे ही हम तमतमा उठते हैं। ईगो और स्वार्थ, यानी कि हमारी पूरी चेतना अब हमारे इस ईगो और अपने इस स्वार्थ की रक्षा करने में लगी हुई है, और हम जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई इस पर जरा भी ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए। ये हमारी, अब देखिए कि धीरे धीरे वो जो चेतना है उस पर कैसे धूल जम रही है, जैसे कि ग्लास के ऊपर, मिरर के ऊपर, जैसे कि धूल जमती है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, पता नहीं किन किन चीजों से हम घृणा करने लगते हैं, किन किन बातों को देखकर हमारे मन में एक तरह से विभत्स का भाव पैदा होता है, हम नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। तो ये दुनिया भर की दूसरी चीजें हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते, अपेक्षाएं करने लगते हैं, और जैसे ही हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, वैसे फिर से हमारी चेतना में ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने जहर का कोई इंजेक्शन लगा दिया हो, और वैसे ही पूरा की पूरा हमारा शरीर, पूरा का पूरा रक्त संचार तंत्र पता नहीं किस तरीके के एक विषैले कड़वाहट से भर उठता है। जैसे कि ठंड के दिनों में आप देखेंगे कि आप गीली लकड़ी सुलगाइए तो उससे एक अलग तरीके का धुआं निकलता है, कसैला धुआं निकलता है, थोड़ा सा भी वो धुआं हमारे पूरे के पूरे श्वास तंत्र को दुर्गंध से भर देता है। लगभग लगभग यही स्थिति अपेक्षाएं पूरी न होने पर होती है। फिर हम दुनिया भर की दूसरों की शिकायतें करने लगते हैं, साहब ऐसा लगता ही नहीं कि हमसे किसी को शिकायत हो सकती है, बावजूद इसके कि हमको दुनिया भर से शिकायतें होती हैं। तो जब ये कसैला धुआं हमारी चेतना पर छाने लगता है तो स्वाभाविक रूप से मित्रों, वो जो चेतना की जस की तस धर दीनी चदरिया है, जो जस की तस चदरिया है, उस वो मैली होने लगती है, गड़बड़ होने लगती है। अब उस चेतना की जो सारी शक्ति थी वो धुंधलाने लगती है, खत्म होने लगती है। और मित्रों, जब ये खत्म होने लगेगी, अब आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि वैसे वैसे हम स्पिरिचुअलिटी से दूर होने लगते हैं। क्योंकि अब उस मिरर पर वो चमक रही नहीं गई है, उसने पूरी अपनी जो शाइनिंग पावर थी वो खो दी है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है मित्रों, ये केवल एक ऐसी चुनौती है आप कह लीजिए, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, इसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अब आप देखिए कि ये जो घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, अपेक्षा, शिकायतें, इस तरह के जितने भी निगेटिव बातें हैं, इन निगेटिव बातों से आप अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं, आपके सामने ये चुनौती है। और मजेदार बात ये है कि ये इनसे दूर रखने की जितनी भी चुनौतियां हैं, ये जीवन की बहुत सामान्य सी बातें हैं, सामान्य सी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बिना जीवन चलेगा ही नहीं, सच पूछिए तो जीवन इनके बिना ही चलता है। इनका जितना ज्यादा आपके पास अभाव होगा, जीवन उतना अधिक बेहतर होगा। जीवन इसलिए उतना अधिक बेहतर होगा क्योंकि इनके अभाव में हमारे पास उतनी अधिक स्पिरिचुअलिटी होगी, उतनी अधिक हमारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। स्पिरिचुअल एनर्जी बेसिकली नथिंग एल्स बट कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं उन सकारात्मक ऊर्जाओं का संघनन, एक जगह केंद्रित होना ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, नथिंग एल्स। अब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां क्या होता है? हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर का निवास है, जहां ईश्वर रह रहे हैं। ईश्वर का निवास है का मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, और वहां जब कोई भी जाता है तो कुछ देर के लिए ही सही, उसके दिमाग में भी कुछ न कुछ तो अच्छे ही भाव निकलेंगे, क्योंकि हम चाहे अरबपति हों या भिखारी हों, ईश्वर के दरबार में तो भिखारी ही बनकर जाते हैं, कुछ न कुछ मांगने ही जाते हैं, देने तो कुछ जाते ही नहीं, चाहे हम कुछ भी क्यों न मांगे। तो ईश्वर के दरबार में हर कोई भिखारी है, और जो भिखारी होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है आपको मालूम है? सोच के देखिए, भिखारी की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं कि वो भूखा है, भिखारी की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है मित्रों वो ये है कि उसमें ईगो नहीं है। जिसमें ईगो होगा वो कभी भिखारी बन ही नहीं सकता, ईगोलेस है। आप ठुकरा दीजिए, आप गाली दीजिए, आप उसको बाप के सामने कटोरा फैला रहा है, आप उसे मत दीजिए, दुत्कार दीजिए, वो चुपचाप चला जाएगा। ये बात अलग है कि वो बड़बड़ाता रहे लेकिन आपसे कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप चला जाएगा। और सच है कि ईगो नहीं है तभी वो भिखारी है, या कह लीजिए कि भिखारी बनने के बाद वो ईगोलेस हो गया है। इसीलिए तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को नाम दिया भिक्षु। इस भिक्षु शब्द से ही बना है भीख, वही शब्द है वो, कि भीख मांगो, तुम जा करके घर में मांगो, और जब वो तुमको ठुकराएं तो उसे बर्दाश्त करो, धीरे 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 बर्दाश्त करने की तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ईगो नाम का कुछ रहे ही नहीं जाएगा। और जिस दिन ईगो नाम का कुछ नहीं रह जाएगा, उस दिन ये घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, शिकायतें सब दूर हो जाएंगी। आप जब कभी शांत मन से, इत्मीनान से अपने बारे में सोचेंगे, अपने व्यवहार के बारे में, अपने विचारों के बारे में, तो मित्रों घूम फिरकर आप पाएंगे कि जो भी संकट आ रहा है वह ईगो के कारण ही आ रहा है। जैसे मैंने ईर्ष्या की बात कही, सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि नहीं, ईर्ष्या का संबंध ईगो से नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे पास अच्छी खासी कार है जिसकी कीमत 8-10 लाख रुपए है, लेकिन पड़ोसी के पास अगर 50 लाख की BMW आ गई तो वो बिचारी कार मेरी ईर्ष्या का कारण बन गई। क्यों ईर्ष्या का कारण बन गई? क्योंकि अब लग रहा है कि यार उसकी जो महंगी कार है उसके सामने मेरी कार छोटी हो गई। ईगो, स्पष्ट रूप से ईगो है। तो ये जो ईश्वर के सामने हम जब भिखारी बनकर जाते हैं मित्रों, तो सेकेंड के लिए ही सही, हम एक तरीके से ईगो लेस होकर के जाते हैं। और अगर आप ईगो को लेकर जा रहे हैं तो आप केवल ईश्वर के सामने जाने का एक नाटक कर रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी उस समय नहीं आएगी, कोई स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं आएगी। मित्रों, कुछ लोग इस तरह की स्पिरिचुअल फीलिंग को, स्पिरिचुअल एनर्जी को एक तरह से इरेशनल मान लेते हैं। जैसे मैं तर्क की बातें अक्सर करता हूं कि तर्क से हमें चीजों को लेना चाहिए, मैं यहां कहना चाहूंगा तो क्या स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड लॉजिक है? क्या इसका कोई तर्क नहीं है? क्या सच में विज्ञान और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है? धर्म विज्ञान की ही उत्पत्ति है, या कह लीजिए कि धर्म ही विज्ञान था, या विज्ञान ही धर्म है। इन सब चीजों पर बहुत बहस हुई है, और यदि आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानना है तो आप आइंस्टीन को पढ़कर देखिए, आइंस्टीन के जीवन को पढ़कर के देखिए, उनके फिलॉसफी को आप देखिए, तो आपको शायद पहली बार यकीन हो सकेगा कि वास्तव में धर्म और विज्ञान किस तरीके से जुड़वा भाई हैं। आप न्यूटन को पढ़ करके देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आज फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं न्यूटन, एक तरीके से किस तरीके से वो बाइबल पढ़ा करते थे, छुप छुप कर पढ़ा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाइबल पढ़ते हुए देख करके आलोचना करें मेरी, लेकिन वो ऐसा करते थे। मित्रों, जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज नॉट बियॉन्ड द लॉजिक। हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका लॉजिक नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इमोशंस। इमोशंस को कुछ लोग कहते हैं कि कचरा है, फालतू है, बेकार की चीजें हैं, इससे जीवन में नुकसान ही नुकसान है, ये पिलपिलापन है, जो भी कहें। लेकिन क्या इमोशंस की अपनी रियलिटी नहीं है? इमोशंस भी तो रियल है ना, वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी भी अपनी रियलिटी है, भावनाओं का भी अपना यथार्थ होता है। अब हम उस यथार्थ को समझकर उसका एक सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी गलती है, हमारी कमी है, वो हमारी अज्ञानता है। हम उसे जानने की कोशिश करें, और जानने के बाद हम रिजेक्ट करें तब बात समझ में आती है। हम जान नहीं रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है मित्रों कि हम फिर उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसे जैसे हम एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी के करीब पहुंचते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी की जो ताकत है वो बढ़ने लगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप मेरे प्रिय श्रोता हैं, आप अपनी उम्र के बारे में सोचिए। आपकी अभी एक पर्टिकुलर एज है, 30 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल, जो भी एज है, इस अपनी उम्र में आप 365 का गुणा कीजिए, उतने दिन, और एक फिर जितने दिन आ जाए उसमें आप 24 का गुणा कीजिए तो उतने घंटे, और फिर जो आता है, जो परिणाम आया है उसमें 60 का गुणा कीजिए तो पता लगा उतने मिनट्स, और उतने अब जो आया है उसमें फिर 60 का फिर से गुणा कीजिए उतने सेकंड। इतना इसका मतलब है कि हम अभी तक इतने सेकंड जी चुके हैं, इतने सेकंड, सेकंड की बात मैं जानबूझ करके कह रहा हूं, इतने सेकंड हम जी चुके हैं। और जीवन को खत्म करने के लिए, हमारे इस जीवन को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए एक सेकंड पर्याप्त है। एक सेकंड, सीवियर हार्ट अटैक हो जाए विद इन सेकंड फिनिश्ड, बहुत फैटल एक्सीडेंट हो जाए विद इन सेकंड फिनिश्ड, लाइफ हमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम लाखों सेकंड जी चुके हैं, लेकिन वो एक सेकंड हमारे सामने अभी तक नहीं आया है जो हमारे जीवन को खत्म करने के लिए सफिशियंट था। केवल लाखों सेकंड में वो एक सेकंड नहीं आया है। आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा जीवन अब तक असुरक्षित रहा है, क्या यह सिर्फ इसलिए सुरक्षित रहा है क्योंकि हमने इसकी सुरक्षा की है? आपको क्या लगता है? भ्रम तो यही होता है, हम संभल कर गाड़ी चलाते हैं, हम संभल कर सड़क पर चलते हैं, लेकिन क्या करेंगे, छत गिर जाए तो, भूकंप आ जाए तो, दूसरा कोई गड़बड़ गाड़ी चलाए तो क्या करेंगे? आप संभल कर आप चल रहे हैं, दूसरा नहीं चल रहा हो तो हजारों लाखों कारण बन सकते हैं इस जीवन को खत्म करने के लिए, लेकिन यह जीवन अभी बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो किसकी वजह से खत्म नहीं हुआ? नो डाउट कि हमारा अपना रोल है, उसे मैं जीरो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ हमारा ही अपना रोल नहीं है, वो कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो लगातार हमें प्रोटेक्ट करती रहती हैं, और वो अपने तरीके से, विचित्र ढंग से काम करती हैं, अपने ढंग से काम करती हैं। आपने अनुभव किया होगा कितनी बार ऐसा होता है, चाहे आप गाड़ी में ही बैठे हों, या खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, या बाइक चला रहे हों, अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर अचानक ऐसा लगता है कि ओह बच गए, अचानक लगता है सब कुछ खत्म हो गया, फिर अचानक लगता है ओह बच गए। जब आपको हमको ये लगता है कि अचानक सब खत्म हो गया, स्वाभाविक रूप से उस समय हम अपना आंतरिक संतुलन खो चुके होते हैं, हमारा जो इनर बैलेंस होता है वो गड़बड़ा चुका होता है। तभी तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, मतलब अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होना है वो होकर रहेगा। यानी कि अब हमारी चेतना, हमारी सतर्कता, हमारी बुद्धि, हमारे एक्शन काम नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद हम बचते हैं। याद रखिए कि हम सिर्फ हम इसलिए नहीं बचते कि कोई आकर के हमें बचा लेता है, हमारी चेतना पर से हमारा नियंत्रण खत्म हो गया है, हमारे एक्शन पर से हमारा नियंत्रण खत्म हो गया है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारी चेतना भी काम कर रही है, हमारे एक्शन भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं, वो कौन है जो हमारा नियंत्रण संभालता है? मैं देखिए फिर इसको अलग तरीके से लीजिएगा, मैं किसी ऐसे ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं जो शरीर के रूप में आकर के हमारे गाड़ी के एक्सीडेंट को उसी दिशा में मोड़ देता है जिस दिशा में हम बच सकते हैं, या हमारी ब्रेक लग जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं चेतना की बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप उसे ईश्वर का नाम दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है जो हमें बचाता है, चेतना पर नियंत्रण छूटने के बावजूद हमारी चेतना पर हमारे नियंत्रण को बनाए रखता है। मित्रों, इसे मैं कहता हूं स्पिरिचुअल एनर्जी, जिस जो कहीं ना कहीं हम सबको लगातार घेरे रहती है। दोस्तों, दो तीन तरह की घटनाएं जिसको हम महसूस करते हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है, भले ही वो उसको पकड़ न पाया हो या आज उसे याद न कर पाता हो, या जो बहुत ही ज्यादा तर्कवादी होते हैं वो तर्कवादी इसको आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, वो उनकी अपनी मान्यता है। लेकिन ऐसे एक दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसे सच पूछिए तो मुझे लगता है कि एक तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी का नाम दिया जा सकता है, या स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया जा सकता है, या यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो और फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको क्वांटम फिजिक्स मान सकते हैं, जिस पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। एक है अंतरात्मा की आवाज। ये अंतरात्मा की आवाज क्या है? शब्द ही है आत्मा, अंतरात्मा की आवाज। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है वॉइस ऑफ कॉन्शस, मतलब चेतना की आवाज आप कह सकते हैं। वो चेतना को ही लेकर के मैंने शुरू में आपसे बात की थी, लगभग मैं भी उसे उसी रूप में लेता हूं। ये जो अंतरात्मा की आवाज है, आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, ये करें या वो करें, ये करें या वो करें, लॉजिकली सोचते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। शायद आपने महसूस किया हो कि पता नहीं कुछ ऐसा लगता है, कोई एक ऐसी आवाज सी आती है अंदर से या कानों से, या कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि हम अचानक निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ये किया जाना चाहिए, और हम निर्णय ले लेते हैं, और मजेदार बात यह है कि वो निर्णय सही होता है। कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं इसी बात पर कि ठीक है देखते हैं कि भगवान क्या बताता है। तो दोस्तों, ये जो अंतरात्मा की आवाज है ये क्या है? ये पवित्र चेतना की ही आवाज है जो आपको बताती है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे कि इसीलिए कहा जाता है कि जो अंतरात्मा होती है, हमारा जो कॉन्शियस होता है, वो हमेशा बुरे काम से हमें बचाता है। बुरा से बुरा काम करने वाला व्यक्ति भी है, जानता है कि वो काम तो गलत कर रहा है, और करने से पहले वो थोड़ा सा हिचकता भी है, तो कौन हिचकाता है उसको? उसकी अंतरात्मा ही हिचकाती है, उसको संकोच में डालती है, उसको थोड़ी देर के लिए विथहोल्ड करती है, रोकती है। लेकिन उसकी अपनी कुछ ऐसी सोच होती है कि वह अपने आप को रोक नहीं पाता और गलत और बुरे काम कर बैठता है। लेकिन जिसकी अंतरात्मा जितनी ज्यादा पवित्र होगी, जितनी ज्यादा उसमें विशुद्धता होगी, वह बुरे कामों से अपने आप को उतना ही अधिक बचाएगा, क्योंकि वह जानता है कि बुरे काम करने का मतलब है इस अंतरात्मा का जो खजाना मेरे पास है, जो स्पिरिचुअलिटी की जो समृद्धि मेरे पास है, जो पूंजी मेरे पास है, वो पूंजी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो पूंजी धीरे धीरे करप्ट हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों, आप लोगों ने यह भी महसूस किया होगा, पूर्वाभास होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, जैसे आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें बातें कही गई हैं, लोगों ने बहुत महसूस भी किया है। मान लीजिए कि एक माँ है वो अपने गांव में रह रही है हिंदुस्तान के, और बेटा है वो कहीं भी विदेश में रह रहा है। जब बेटा बीमार पड़ता है या किसी मुसीबत में आता है तो यहां माँ को अनमनापन महसूस होने लगता है। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो मेरे बेटे का फ्रेंड रहा है, वो अभी इसी भी टॉपिक पर फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, पीएचडी के लिए काम कर रहा है, और उसका टॉपिक यही है कि दो चीजें जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है वो किस तरीके से एक ही जैसा व्यवहार करती हैं, वो कौन सी ताकत होती है जो दोनों को एक ही जैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देती है और एक ही समय में एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, और ये ऐसा कई कई बार होता है, तो उनकी कनेक्टिविटी किसके माध्यम से जुड़ी हुई है, यही क्वांटम फिजिक्स है, यही स्पिरिचुअलिटी है, या कह लीजिए यही ईश्वर है, या कह लीजिए यही धर्म है, जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन ये चीजें होती हैं, इनका अपना साइंस है, इनकी अपनी स्पिरिचुअलिटी है। बहुत सी घटनाएं जो पहले से जो होनी है हमें पहले से मालूम हो जाती है, चाहे वो स्वप्न के जरिए मालूम हो, चाहे किसी व्यक्ति के जरिए मालूम हो, चाहे रास्ते इसके कई हो सकते हैं जिसे हम इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं। दोस्तों इसके अनुभव तो आपके पास भी होंगे, अंतरात्मा की आवाज भी आप लोगों ने सुनी होगी, क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा आपको लग रहा हो कि नहीं है तो मैं एक बार आपसे अर्ज करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितनी भी जिंदगी का जो भी दौर आपने गुजारा है उन पर थोड़ा सा ध्यान से कुछ देर के लिए रुक करके सोचने की कोशिश कीजिए, आपको अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी, आप उन क्षणों को पकड़ सकेंगे जो पहले कभी आपके साथ घटित हुई थी, आप पूर्वाभासों को जान सकेंगे कि किस तरीके से आपको कुछ ऐसा लगा, कुछ अनमनापन सा लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, आप बाहर सफर पे जाने वाले थे, कुछ अनमनापन सा लगा, किसी ने रोक दिया कि मत जाओ, आप नहीं गए और आज आप इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप नहीं गए, अदरवाइज जिंदगी खत्म हो चुकी होती या और कुछ हो चुका होता, इस तरह के पूर्वाभास होते हैं। तो सवाल यह है कि हमें ये भविष्यवाणी कह दीजिए कौन करता है, कौन बताता है? मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए कोई एक अलग से स्वरूप लेकर के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन वो एनर्जी काम करती है, और ये जो एनर्जी है दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी की ही एनर्जी है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इससे पहले वाले ऑडियो में कहा था कि इसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं है। अगर कुछ करना है तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि अपने मन की पवित्रता को बनाए और बचाए रखना है, इस पर लगातार चोट पहुंचेंगे, जिसे हमारे यहां माया कहा गया है। ये जो माया है वो इसी तरह से, और वैसे भी अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथों में भी जाइए तो एक शैतान होता है जो हमें लगातार भटकाने की कोशिश करता है। ये भटकाने की कोशिश क्या है? वो हमारे मन की पवित्रता, मन की अच्छाइयां, इन सबको ही गलत रास्तों पर ले जाकर के प्रदूषित करने की कोशिश करता है, गंदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये गंदा हो गया ये व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल पावर है उससे रहित हो जाएगा। हम अपने आप को इससे कितना बचा पाते हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मित्रों वक्त नहीं है कि उनके मैं उदाहरण दूं, और मैं जरूरी भी नहीं समझता कि उनके उदाहरण दिए जाएं, बेहतर होगा कि आप सब अपने अपने जीवन के उदाहरण लें, आपको मिलेंगे, बशर्ते कि आप थोड़ा सा समय तो निकालें कि आप अपने आप से भी बात कर सकें। हम हमेशा दूसरों से तो बात करते रहते हैं, लगातार दूसरों से बात करते रहते हैं, बात ही बात करते रहते हैं और चाहते हैं कि लगातार बात करते रहें, लेकिन मित्रों कभी हम अपने लिए भी तो समय निकालें और खुद से बात करें। आप बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो अंतर मन है आपसे बात करने के लिए छटपटा रहा है, तरस रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आप अपने से बात करने के लिए वक्त निकालिए, वो आपको आपकी ताकतों से परिचित कराएगा, और वह ताकत जिस पर आपको अभी तक यकीन नहीं है या जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी होगी, स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। आपको लगेगा कि नहीं मैं ये हूं, मेरे साथ ये घटित हुआ है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी की देन है, तब आप उस पर भरोसा करने लगेंगे, और जब आप उस पर किसी भी चीज पर भरोसा करने लगते हैं तो वो आपके लिए मूल्यवान हो जाती है। आप उसे सहेज कर रखना चाहते हैं, उसे आप अपनी धरोहर मानते हैं, उसे आप अपनी संपत्ति मानते हैं। तो मित्रों अब स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में मैं इतनी ही बात कहकर आज के अपने इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को समाप्त करना चाहूंगा, और मुझे यकीन है कि अब शायद उसके व्यावहारिक पक्ष पर आपकी थोड़ी सी पकड़ बन चुकी बनी होगी, थोड़ी सी समझ भी विकसित हुई होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा छटपटाहट की जरूरत नहीं है। केवल अपने मन की शुद्धता को बनाए रखिए, मन को निर्मल बनाए रखिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के संग रहिए। धीरे धीरे ये खुद ही आती चली जाएगी। वो तो पहले से थी, किसी वजह से वो छोड़कर चली गई है, वो तो इंतजार ही कर रही है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इसी तरीके से काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी ही है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट होती है। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को यहीं समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, और साथ ही यह भी चाहता हूं कि इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस के बारे में अपनी राय से मुझे परिचित कराएं, ताकि मैं अपने आप को और भी अधिक आप लोग सबके अनुकूल ढाल सकूं। तो मित्रों, अंत में अभी यही कि मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।